छंद पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 19 प्रणीतं तं बन्धतत्व प्रकाशकं महाधवल विख्यातं महाबन्धं नमाम्यहम्। यह श्री भगवान भूतबलि भट्टारक पंडित महाबन्ध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें दूसरी पुस्तक में दूसरा जो स्थिति बंधाधिकार है उसको देखते हुए अभी हम पृष्ठ संख्या 75 पर आ गए। 75 जघन्य अंतर की प्ररूपना चल रही थी और मार्गणाओं में हम देख रहे थे योग मार्गणा का अपना प्रकरण चल रहा था। काय योगी जीवों की बात हम पढ़ेंगे, एक दो तीन लाइन पढ़ी थी वहां से पढ़ेंगे। 75 पृष्ठ पर तीसरी लाइन, काय योगी जीवों में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतर ओघ के समान है, यानी जघन्य स्थितिबंध का अंतर नहीं है क्योंकि उक्षेपक के होता है दसवें के अंत में। अजघन्य स्थितिबंध का अंतर ग्यारहवें गुणस्थान की अपेक्षा घटित होता है। मात्र कायोग कहने से औदारिक कायोग था, ग्यारहवें गुणस्थान में गया, एक समय के लिए रहा, मरण हुआ, विग्रह गति में या तो कारमांड से गया या रुजुगति से वैक्रिक मिश्र गया में गया, फिर भी कायोग तो चल रहा है तो वहां एक समय भी घटित होता है और यथायोग्य अंतर्मूर्त भी घटित होता है। परंतु औदारिक कायोग में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल मनोयोगियों के समान का अर्थ है अंतर नहीं है। जघन्यता तो नहीं है वो तो ठीक है, परंतु औदारिक काय होते हुए दसवें के अंत से शुरू हुए मान लेते हैं, पूरा ग्यारहवें में और फिर वापस दसवें में आने तक वही योग नहीं चलेगा, उसका काल छोटा है, इसलिए औदारिक काय योग में अंतर नहीं है ऐसा कहा। इसी की चर्चा हमने देखी थी मनोयोगी के प्रकरण में, जब वहां पहले भी बात आई थी ना 65 पेज पर, वहां हमने यही प्रश्न उठाया था कि वही योग कैसे चल रहा है। अब हम आगे पढ़ेंगे। तथा आयु कर्म का भंग उत्कृष्ट के समान है। उत्कृष्ट के समान क्या है आयु कर्म का भंग? तो काय योगी जीवों में आयु जघन्य आयु का बंध किया और फिर दोबारा करेंगे, क्यों नहीं होगा? एक शुद्र भव होगा जघन्य काल, जघन्य आयु कब बनती है? वो तो सारे कायोगी ही है केंद्रीय जी। तो कायोगी कायोग के रहते हुए, कायोग का है औदारिक कायोग नहीं, कायोग के रहते हुए एक बार आयु का बंध किया किसी लब्धि पर्याप्त ने, जघन्य आयु बंध किया असंक्षेपात काल, फिर दूसरे भव में उसी समय पर किया, एक समय कम क्षुद्र भव होगा जघन्य आयु बंध। कायोग चल रहे ना,
कायोग में होगा।
मैं कायोग बार बार कह रही हूँ, अभी औदारिक की बात ही नहीं रही। हाँ, परंतु कायोगी के लिए आयु की बात कहाँ उठाई? काय और औदारिक काय के लिए कहाँ एक, यहाँ भी दोनों के लिए जो लिखना है, दोनों के लिए घटित करना है, तो हम औदारिक कायों के लिए कहेंगे नहीं होता है घटित। देखो इसका उत्कृष्ट का अजगण्य तो होता है, जगन्य तो कब होता है, वो लब्धि पर्याप्त की आयु बांधी, अंत में बांधी। अब जो लब्धि पर्याप्त की आयु है वो बांधने वाला भी औदारिक मिश्र वाला है, और आगे भी औदारिक मिश्र नहीं आया है बिना कारमान के, ऐसा हो सकता है। परंतु कायोग कहने से वो सब उसमें आ गए, औदारिक मिश्र कहो या औदारिक कहो, वो तो कायोगी है, उसमें हम डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। निकालो उत्कृष्ट वाला बंद। उत्कृष्ट में 61 के आगे कहीं होगा, 63-64 योगी है ना, हाँ 64 पेज है। देखो वहां क्या कहा है, पांच मनोयोगी वचन योगी के लिए आयु का तो अंतरकाल ही नहीं है, वो तो उसमें तो ठीक है, वैसे वैकृत कायोगी आहारक कायोगी में जानना। अब कायोगी औदारिक कायोगी में जो है ऐसा ही है, किंतु इतनी विशेषता इनमें आयु कर्म के उत्कृष्ट स्थिति बंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो तो योग पलट जाता है ना बीच में। उत्कृष्ट स्थिति बंध करने वाला पंचेंद्रिय है, उसके तो मनोयोग वचन योग हो गए, परंतु यहाँ जघन्य के लिए काय योग में एक इंद्रिय जीव तो है, काय योगी ही है, तो उसमें तो जघन्य घटित हो सकता है। और अनुत्कृष्ट स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूल, और उत्कृष्ट अंतर क्रम से साधिक 22,000 वर्ष, ये घटित होगा। अजघन्य के लिए तो घटित होता है। देखो हम यहाँ पढ़ेंगे, वहां तो उत्कृष्ट के समान कहा है, परंतु वो जघन्य में तो घटित नहीं होता है। देखो आयु कर्म का भंग, आयु हम काय योगी में आयु देखते हैं, तो काय योगी में जघन्य बंध और उसका जघन्य अंतर, उसमें तो एक समय कम लब्धि पर्याप्त की क्षुद्र हो गए ले सकते, क्योंकि कायोग तो कायम है उसका, एक समय कम क्षुद्र हो। क्यों
खाली कायोग,
हाँ उत्कृष्ट अंतर अभी नहीं किया हमने, ये तो जघन्य अंतर हमने देखा है। अब उत्कृष्ट अंतर कितना हो सकता है, कायोगी रहा एक इंद्रिय में रहते हुए कायोगी रहा और उसने जघन्य बंध ही नहीं, तो पल्ले का असंख्या का अभाव हमने देखा था। एक इंद्रियों में जो देखा था आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का अंतर एक समय कम क्षुद्र व और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात विभाग, अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर साधिक 22,000 वर्ष, ये काय योग में तो घटित होगा, औदारिक काय योग में नहीं होगा, क्योंकि उसकी मार्गणा भंग हो जाएगी, वो 7,000 वर्ष को ही हम कहेंगे वहां पर। उत्कृष्ट के समान कहा है, परंतु वो एक इंद्रिय के है ना, एक इंद्रिय के समान घटित होता है। अब औदारिक कायोगी में हम देखते हैं, औदारिक का योगी जगन्य बंध करेगा तो उसका अंतर नहीं होगा, उसका योग पलट जाएगा, कारमाण होगा या मिश्र होगा, इसलिए उसका तो कोई अंतर नहीं होगा। परंतु अजगन्य का अंतर होगा, जगन्य का अंतर नहीं। औदारिक का योगी में अजगन्य का क्या होगा? कम से कम अंतर मूर्त,
कम से कम अंतर
और उत्कृष्ट। एक ही भाव लेना है, 22,000 वर्ष की, उसमें से 1/3 में आयु बांधी, पहली बार बांधी और लास्ट में फिर दोबारा बांधी। अजगन्य का अंतर, अंतर मूर्त से 7,500 वर्ष। ये उत्कृष्ट के समान लिखा है परंतु वो घटित नहीं होता, एकेंद्री के समान घटित हुआ अपना। अब औदारिक मिश्र की बात हम पढ़ रहे हैं, 75 पेज है, नए पैराग्राफ में चलती लाइन। औदारिक मिश्र का योगी जीवों में 7 कर्मों का भंग उत्कृष्ट के समान है, यानी 7 कर्मों का जो जघन्य स्थिति बंद कर रहे हैं उसका अंतर कितना होगा? तो कम से कम अंतर मूर्त तो होता है। इतना उसका काल होगा क्या औदारिक मिश्र का? वो औदारिक मिश्र तो चालू रहता है ना, उसका औदारिक मिश्र से औदारिक मिश्र भी रहता है, वो हो सकता है। तो अंतर मूर्त घटित होगा। औदारिक मिश्र का योगी में 7 कर्मों का भंग उत्कृष्ट के समान है, यानी उसने जगन्य उत्कृष्ट में उनके लिए 7 कर्मों का जगन्य होगा कि नहीं होगा? देखो औदारिक मिश्र में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का अंतर काल नहीं दिखा। क्या पंचेंद्रिय जगन्य? अपने जगन्य की प्रकृति चल रहा है। औदारिक मिश्र में जगन्य कौन करेगा? उनके लिए जो जगन्य है स्वामी निकालना ना, औदारिक मिश्र वाला स्वामी। उत्कृष्ट के समान उन्होंने कहा है, परंतु हमें उसका स्वामित्व देखेंगे, जगन्य की स्वामित्व। देखो पेज नंबर 43 के आगे पे, 44 औदारिक मिश्र कहा है, औदारिक मिश्र का ये वैक्रियक की बात है। यहाँ पर पहले नहीं, पंचेंद्रिय अपर्याप्त के वहां लिखी हुई है, सभी अपर्याप्त के ऐसा ही वैक्रिय। हाँ देखो तीर्यंचो में 43 पेज पर, 7 कर्मों का जघन्य स्वामी कौन है? बादर एक इंद्रिय जीव पर्याप्त है सर्व विषय वगैरह वगैरह। इसी प्रकार सब एक इंद्रिय सब 5 सावर का है, औदारिक मिश्र वहां लिया है। यानी औदारिक मिश्र में लब्धि अपर्याप्त भी आते हैं और बादर पर्याप्त जो होने वाले वो भी आते हैं, तो वो जघन्य करेंगे। तो जघन्य कब करते हैं? तो जो सर्व विशुद्ध है ऐसा।
औदारिक मिश्र का योग में
हाँ ना, उनके योग जघन्य होगा। ओह का जगन्य अलग है, मार्गणाओं का जगन्य उनके लिए जो है जगन्य उसको लेना। उसमें भी बादर एक केंद्रीय वाले वो ही करेंगे। परंतु उनका मिश्र होते हुए वापस जघन्य से अजघन्य होकर फिर जघन्य होने इतना उसका काल है क्या बड़ा ये सोचना पड़ेगा। ख्याल में शरीर पर्याप्ति तक औदारिक मिश्र का योग और अजघन्य का जो अंतर्मुहूर्त है यानी जघन्य में से अजघन्य हुआ और फिर वापस जघन्य हुआ तो इतना बड़ा अंतर्मुहूर्त वहां है कि नहीं है ये सोचना पड़ेगा। तो यहाँ जो लिखा है उसके समान है इसका अर्थ वहां अंतर नहीं होता ये बात वहां कहना चाहते हैं। परंतु अजघन्य का तो अंतर हो सकता है ना, वो अजघन्य का अंतर तो एक समय का भी घटित होता है। यदि हम कहेंगे उसके अंत समय में या पहले समय में तो ही बात यह घटित हो सकती है। तथा आयु कर्म का भंग मनुष्य पर्याप्त कोण के समान है। एक समय कम क्षुद्र भवन जघन्य का जघन्य अंतर और जघन्य का उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुहूर्त और जघन्य के लिए दो अपकर्षण काल के बीच वाला अंतर उत्कृष्ट का अंतर कैसे औदारिक मिश्र रहेगा क्या नहीं 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 उत्कृष्ट आयु कह रहे हैं कि उत्कृष्ट अंतर कह रहे हैं आप। उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त होगा ना, औदारिक मिश्र में लगातार रहने का अंतर्मूर्त रहेगा लब्धि पर्याप्त की अपेक्षा। दोनों को ही अंतर्मूर्त ही कहेंगे वैसे, देखो अभी हमने मनुष्य पर्याप्त में देख लिया था यहाँ पर तीरियंच के वही मनुष्य की बात आई थी फॉर 73 तीरियंच की बात कहीं आई थी 71 पर आई थी हाँ 71 पर नीचे से हम देख रहे थे पंचेंद्रिय तीरियंचों के समान ने मनुष्य लब्धि पर्याप्त की बात कहा है। सब अपर्याप्त कोण में जानना चाहिए, मनुष्य अपर्याप्त कोण के सात कर्मों की बात कही परंतु आयु कर्म के बारे में तो ऐसा ही है। यानी जघन्य का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुल्लक भव उत्कृष्ट अंतर अंतर्मुक्त मिला आपको 71 पेज नीचे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लाइन वहां आयु कर्म की बात चल रही थी। आठवें के लास्ट में आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय कम क्षुल्लक हुआ यानी औदारिक मिश्र लब्धि पर्याप्तक ने आयु के अंत में वो असंक्षेपा था तब उसने जघन्य आयु बांधी फिर अपर्याप्त में उत्पन्न हुआ औदारिक मिश्र ही कायम रहा उसका और फिर दूसरी बार आयु के अंत में बांधा तो एक समय पर कम क्षुद्र भव। अब उत्कृष्ट अंतर कैसा होगा कि उसने वो जघन्य आयु नहीं बांधी लब्धि पर्याप्त की बांधी पर थोड़ी ज्यादा बांधी और लगातार लब्धि पर्याप्त के भोग करता रहा तो अंतर्मूर्त ही हो सकते हैं तो उत्कृष्ट अंतर उसने अंत में जाके फिर जघन्य आयु बांधी तो अंतर्मूर्त घटित होगा। अजघन्य का तो जघन्य को या उत्कृष्ट को अंतर्मूर्त ही। अब हम आते अपने 75 पेज पर। अब वैक्रिक कायोगी में हम देखेंगे वैक्रिक कायोगी जीव में सात कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का अंतरकाल नहीं है। देखो वो सात कर्मों का जघन्य तो कर सकते हैं, कौन करते हैं सम्यक दृष्टि असंगी से आया हुआ यस असंगी नहीं, असंगी से आया हुआ वैकृत का योग कैसे होगा? देवनार के हो सकता है, वैकृत का योग कब होगा? वो तो वैकृत का योग पर्याप्त जीव है, सर्व विशुद्ध सम्यक दृष्टि ही लेना है। परंतु उसने जघन्य किया और वापस अजघन्य करके फिर जघन्य करे, ऐसे तो नहीं होगा। योग का काल छोटा है, वो मन वचन का योग रूप पलट हो जाएगा, इसलिए उसका अंतर नहीं। अजघन्य स्थिति बंध का जघन्य अंतर एक समय, वो तो कहीं पर भी घटित होता है। और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, ये कौन सा अंतर्मूर्त है? योग के अंतर्मूर्त से दो समय कम कर देना, दोनों बाजू उसको अजघन्य रखना और बीच में जघन्य कर देना, ये तो होगा। क्योंकि अंतर्मूर्त छोटे बड़े हो सकते हैं, यानी योग वाले अंतर्मूर्त से अंतर्मूर्त कम देखना। यही बात हमने परसों सोची थी ना, आयु कर्म के वैकृत का योग रहते हुए आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य स्थिति बंध का अंतर काल नहीं है। अजघन्य का कैसा होगा? अपन दो बार वाला बंद करने का अंतर कितना बड़ा होगा? तो छह महीने तक वैकृत का योग रहेगा। एक पकड़ने जाओ तो दूसरा छूटता है अपना। समझ में है ना? जघन्य का भी अंतर काल नहीं, क्योंकि दो अपकर्ष के बीच में भी जो अंतर है वो बड़ा है योग के काल से। इसी प्रकार आहारक का योगी जीवों के जानना चाहिए, आहारक में वो जघन्य का अंतर नहीं होगा, अजघन्य का एक समय अंतर्मूर्त होगा। वैकृत मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों के और आहारक मिश्र का योगी जीवों में आठ कर्मों के तथा कार्मण का योगी और अनाहारक जीवों में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थिति बंध का अंतर काल नहीं है। अब वैकृत मिश्र का योगी जीवों में सात कर्मों का जघन्य कौन करेगा? जघन्य वहाँ भी नहीं, वो कर्मण का योग में ही घटित होगा। अब उनके योग जो विशुद्ध परिणाम वाला है उसको लेंगे, ऑप्शन श्रेणी वाला भी लेंगे वहाँ पर वैकृत मिश्र में। कौन बताए स्वामी? फोर्टी फोर पर करेगा। हाँ, तो अंतिम समय में शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले समय में, इसलिए उसका अंतर हो नहीं सकता। आहारक मिश्र में भी ऐसा ही, वो जो शरीर पर्याप्ति पूर्ण करने वाला है उसको। एकांत वृद्धि योग का बढ़ जाता है, परंतु यहाँ तो बंद की बात चल रही, स्थिति बंद की बात चल रही। योग के कारण नहीं होता, प्रदेश प्रकृति होती है। एक्चुअली यहाँ जघन्य की स्वामित्व में उसको ले लिया ना अंतिम समय में, इसलिए इसके पश्चात वाले समय में उसका बंद बढ़ने वाला है। यानी जिसके होता होगा उसके वही तो जघन्य होने का बाद में वैकृत का योगी होगा, परंतु वहां तो उसके बंद बढ़ेगा अभी उसके बाद।
Thank you.
वो उसी के अंतिम समय में ज्यादा होता है। अब आगे स्त्री वेदी, पुरुष वेदी और नपुंसक वेदी जीवों में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं है। अब जब ये तीन वेद वाले लिए हैं, हाँ, तो सवेद भाग के अंत में वो कौन सा सवेद भाग?
शपक
में उनका जघन्य होगा, उनके लिए जघन्य तभी होगा। नपुंसक वेदी वाले के जघन्य कब होगा? तभी होगा ना वेद के, तो वहाँ बंद कितना है? बिल्कुल कुछ, फिर भी वो संख्यात में है, एक इंद्रिय जितना तो नहीं है, एक इंद्रिय जितना तो नहीं है। मैं कह रही हूँ यानी सवेद भाग के अंत में जो बंद है उसको लेना है आपको, तो इसलिए उसका अंतर घटित नहीं होगा। आप कहेंगे उपशम श्रेणी में अजगण्य का तो अंतर होगा, पर वो अपगत वेदी हो जाएगा, मार्गणा बदल जाएगी। आयु कर्मक, हाँ, आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि आयु कर्म का जघन्य स्थितिबंध जो है नपुंसक वेद में घटित होगा, क्योंकि स्त्री वेद ने जघन्य आयु बांधी है, लब्धि पर्याप्त की बांधी, तो उसकी मार्गणा पलट जाएगी, नपुंसक वेदी हो जाएगा। अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल अनुत्कृष्ट के समान है, यानी कम से कम अंतर्मुख होगा, और अधिक से अधिक एक भव का लेना है, या तो हमने देखा था ना वो 55 पल्ले वाला ले लेना, पूर्व कोटि के त्रिभाग में आयु बांधी, बाद में आयु ही नहीं बांधी, 55 पल्ले वाले वो स्त्री में देवी में उत्पन्न हुआ उसके अंत में बांधी, ऐसा ही था कि क्या था? नहीं, स्त्री वेदी में उत्कृष्ट अंतर, अजगण्य का उत्कृष्ट अंतर साधिक 55 पल्ले क्या नहीं होगा? स्त्री में से स्त्री ही रखना है ना, स्त्री के लिए उत्कृष्ट बंध कर सकता है 33 साल, परंतु वो तो उसका पुरुष वेद बदल जाएगा। हम उत्कृष्ट का बंध नहीं देख रहे, अजगण्य बंध देख रहे, अजगण्य बंध, अजगण्य बंध कर रहे। 33 सागर को भी हम अजगण्य कहेंगे, परंतु मार्गणा पलट जाएगी, मार्गणा नहीं पलटते हुए अजगण्य का उत्कृष्ट अंतर कितना होगा? देखो देखो निकालो, अनुत्कृष्ट की बात निकालो, अनुत्कृष्ट का देखना है। हाँ, उत्कृष्ट अंतर पुरुष स्त्री वेद में साधिक 55 पल्ले, पेज नंबर 65 नीचे से एकदम 3, 4, 5 छठी लाइन, अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जघन्य अंतर अंतर्मुख दो अपकर्ष काल के बीच में, उत्कृष्ट अंतर स्त्री वेद में यानी आयु का बंध ही नहीं किया, साधिक 55 पल्य, क्योंकि वो दो स्त्री वेद ही रखना है उसको, इसलिए 55 पल्य की आयु ली, और उसके अंत में फिर दोबारा उन्होंने आयु बांध दी। शेष दो वेदों में साधिक 33 सागर, यानी पुरुष वेद में देवायु बांधी, पुरुष वेद ही रहा, यहाँ 1/3 पूर्व कोटि पहले बांधी और वहां 33 सागर के अंत में बांधी। नपुंसक वेदी किसी तिर्यंश मनुष्य कहेंगे हम, तिर्यंश कहेंगे, तो उसने 33 सागर की बांधी और वहां पर भी नरक में नपुंसक वेदी ही रहा, अंत में फिर दोबारा आयु बांधी, तो साधिक 33 सागर होगा और यहाँ साधिक 55 पल्ले होगा। ये अजघन्य की बात है, श्रीवेदी में जघन्य का अंतर घटित नहीं होगा, क्योंकि उसका वेद बदल जाएगा दूसरे भव में। देखो, जघन्य स्थितिबंध का अंतर नहीं कहा था और अजघन्य स्थितिबंध का जो अंतर बताया है वो जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर साधिक 55 पल्ली स्त्री वेद के लिए, और अन्य दो वेद में साधिक 33 सवर। इतनी विशेषता है, मिला अपने मूल पेज पर 75 कि नपुसक वेद में आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतरकाल एक समय कम क्षुल्लक भोग ग्रहण प्रमाण है, क्योंकि वो नपुसक वेद का नपुसक वेद ही रहता है, और उत्कृष्ट अंतरकाल 100 सागर पृथक्व प्रमाण है। किसका? जघन्य की बात है, जघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतर कितना बताया? 100 सागर पृथक। क्यों अश्विन भाई बोलो? देखो, नपुसक वेद में जघन्य स्थिति बंद किया, यानी दूसरा एक क्षुद्र हुआ, उसमें से अन्य अन्य नपुसक वेद में रहते 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 रहते, फिर दोबारा वो अपर्याप्त की आयु बांधी उसने, तो उसने जघन्य बंद किया। अपन इसमें वो नपुसक वेद की बात कर रहे हैं, नपुसक वेद रहना चाहिए उसका। अन्य वेद में नहीं, पंचेंद्रिय पर्याप्त में जाएगा भले भी, अभी इसको द्विंद्रिय में भी त्रिंद्रिय में भी भेज सकते, चतुर्द्रिय पंचेंद्रिय में रखना है अधिकतर। यानी उसने एकेंद्रिय की लब्धि अपर्याप्त की जघन्य आयु नहीं बांधी, एकेंद्रिय की मत कहो, क्षुद्र वो नहीं बांधा है। नपुसक वेद में रहते हुए ये सौ साल
के लिए,
नपुसक वेद का काल तो बहुत असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है। इससे ये बड़ा है ना काल, एक इंद्र में रहता तो वो बांधता इतना है ना। आगे विशेषात में देखेंगे, अपगत वेद देख लेते। अपगत वेद में सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं है, क्योंकि वो तो क्षपक में होता है लास्ट में, तथा अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त है। अब ये ग्यारहवे का काल लेना, एक समय में मरण होगा तो परंतु एक समय में मरेगा तो अंतर्मूर्त घटित होगा कि नहीं होगा? तो उसका अपगत वेद ने पूरा ग्यारहवे का काल लेना ही पड़ेगा। विशेषार्थ, तीनों वेदों में सात कर्मों का जघन्य स्थितिबंध क्षपक श्रेणी में होता है, इसलिए इनमें सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध के अंतरकाल का निषेध किया। नपुसक वेद में आयु कर्म के जघन्य, देखो अजघन्य का इसलिए निषेध किया है कि उपशम श्रेणी में जहां ओग में वो घटित होता है वहां ये अपगत वेदी है, इसलिए वेद के रहते हुए ये अंतर घटित नहीं है। लास्ट में जाके अपगत वेदी में तो अजघन्य का अंतर घटित करके दिखाया था। नपुसक वेद में आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का उत्कृष्ट अंतरकाल 100 सागर पृथक प्रमाण बतलाने का कारण यह है, इतने काल तक यह जीव संगी पंचेंद्रिय पर्याय में रह सकता है, जिससे इसके योग्य आयु कर्म का जघन्य स्थिति बंधन न हो। सौ सागर पुस्तक में आपने संगी पंचेंद्रिय की बात है, और जो मात्र पंचेंद्रिय कहेंगे तो हमने हजार सागर देखा था ना, एक हजार सागर देखा। जिससे इसके योग्य आयु कर्म का जघन्य स्थिति बंधन हो। ये संगी में भेजने की क्या बात थी? संगी पंचेंद्रिय पर्याय में, द्विंद्रियादि भी पर्याप्त उनका भोग कर सकता था ना। वो सब मिला के, वो सब इसे में इंक्लूड हो गया है ना। इसके बाद यह एकेंद्रीय पर्याय में जाकर यथा योग्य काल आने पर जघन्य आयु का बंध करता है, शेष कथन स्पष्ट ही है। नपुंसक वेदी रहा, कहीं पर भी रखो, अकेले तीरंज में रखो, मनुष्य में भेजो, नपुंसक।
हाँ,
सागर वो नरक में भेजना उसको। अभी हम 76 पृष्ठ पर आए हैं। मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों में सात कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल सामान्य तिर्यंचों के समान है। ये किसके होगा? हाँ मयंक भाई, मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी में हाँ मिथ्या दृष्टि है, परंतु उनमें कौन सा जीव है जो जघन्य कर रहा है? बने बादर एकेंद्रीय पर्याप्त, बादर एकेंद्रीय पर्याप्त, बादर एकेंद्रीय जीव तो सामान्य तीरंचों के समान है ने। वो जघन्य अंतर, जघन्य का जघन्य अंतर अंतर और जघन्य का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात लोग सूक्ष्म में गया। मैंने जघन्य के लिए अंतर्मूर्त से लेकर असंख्यात लोग और अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल एक समय और अंतर्मूर्त। तथा आयु जघन्य का जघन्य अंतर अंतर्मूत, अंतर्मूत में लौट कर फिर जघन्य कर सकता है, और जघन्य नहीं किया तो असंख्यात लोग। अब अजघन्य का कम से कम एक समय और अधिक से अधिक अंतर अंतर्मूत। किसका पूछ रहे आप? जघन्य का, जघन्य का हाँ असंख्यात लोग, और अजघन्य का जो हम हर जगह देखते हैं एक समय और अंतर्मूल। अभी आयु की बात देखेंगे। आयु कर्म के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल मूलोग के समान है। हम देखते हैं आयु कर्म का जघन्य, अभी मिथ्या दृष्टि है, जघन्य कौन सी आयु बांधेगा या उसके लिए जघन्य क्या है? शुद्र फिर दोबारा वैसा ही बांधा, एक समय कम शुद्र, ये जघन्य का जघन्य अंतर हुआ। अब मिथ्या ज्ञानी रहते हुए वो जघन्य नहीं बांधेगा आयु और वो लंबे काल तक इसी में रहे। हाँ नरक में भेज दो, कितना थे। होगा साधिक 33,000 हो
जाएगा।
अपन यहाँ आने पर भी वो जगह नहीं क्यों बांधने लगेगा, वो साधिक में चला जाएगा। जगन्य आयु कर्म की जगन्य आयु उसने नहीं बांधी, उससे ज्यादा होनी चाहिए इसे लगता है 69 मूल लोक के समान। साधिक 2000 सागर मुझे वही लगता है कि ना जगन्य की बात चल रही। ये रे वो जगन्य किया ही नहीं उसने, एक अपर्याप्त की आयु नहीं बांधी। त्रस हमने देखा था एक इंद्रिय पर्याप्त और त्रस पर्याप्त में रहा।
69
लास्ट लाइन तो 2000 सागर में साधिक कर दिया संख्या 1000 वर्ष एक इंद्रिय के लिए। मैंने वो लब्धि अपर्याप्त के एक बार बहु बांधा, उस लब्धि अपर्याप्त ने बड़ी आयु बांधी, फिर उसने वो जघन्य आयु बांधी ही नहीं, अन्य अन्य पर्याय में बढ़ता रहा। एक वो तो पर्याप्त के बहु करता रहा या अपर्याप्त का भी किया, फिर भी वो जघन्य आयु नहीं बांधी उसने, या फिर अतरस में पर्याप्त में घूमता रहा, तो वो कितना होगा साधिक 2000। ओ जगन्य का अर्थ होता है एक ही भो में दो बार बांधी अंतर्मूर्त के अंतर से। ओ जगन्य का जगन्य अंतर हुआ। ओ जगन्य का उत्कृष्ट अंतर कैसे होगा? अब यहाँ वो साधिक 33 सागर हाँ मिथ्या दृष्टि है 33 सागर की, वो नरकायु बांधी करोड़ पूर्व की थी यहाँ पर भो, वो अंतर पूर्व कोटि यहाँ और वहाँ 33 सागर के अंतर में।
जगन्य का जगत एक
भाव
में दो अंतर्मुख के बीच
में, यानी दो अपकर्ष के बीच में, यानी सातवां अपकर्ष और आठवां अपकर्ष के बीच में दोनों बार आयु बांधेगी तो। अब आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार असंयत, क्योंकि असंयत कहने से वो मिथ्या दृष्टि हो सकता है तो ये बात घटित होगी। अभव्य और मिथ्या दृष्टि जीवों के जानना चाहिए, क्योंकि इन मार्गणाओं में भी मार्गणाएं अलग है परंतु ये सभी मति अज्ञानी श्रुत अज्ञानी है। विभंग ज्ञान में आठों कर्मों के जघन्य और अजघन्य स्थितिबंध का अंतर काल सामान्य नारकियों के समान है। पर सामान्य नारकियों में विभंग ज्ञान में तो ये कैसे घटित होगा? सामान्य सात कर्मों का जघन्य स्थिति बंध तो वहां से आए हुए का होता है, असंगी से आए हुए का, तभी तो विभंग ज्ञान होता नहीं है। अभी यथा ज्ञान वो तो दूसरे नरक से नीचे तक जो देखते हैं।
विभंग ज्ञान में सात कर्मों का जघन्य
कब कहेंगे? वही तो वो तो सम्यक तो के सन्मुख जो होगा उसके होगा ना, विशुद्ध मिथ्या दृष्टि लेना उसमें
दो बार हो सकता है ना।
दो बार कैसे हो?
सम्यक तो प्राप्त किया छूट गया।
सम्यक तो प्राप्त किया तो विभंग ज्ञान कहाँ रहा?
नहीं
मनुष्य में लेना, मनुष्य विभंग ज्ञानी लेना सम्यक तो के सन्मुख है तो उसका अंतर नहीं होगा। फिर जैसे हम हाँ देखो इसमें क्या विशेषता लेनी इतनी, जैसे सामान्य नारकियों में जघन्य का अंतर नहीं होता क्योंकि उनका जघन्य विग्रह गति में होता है और फिर दोबारा अंतर नहीं होता, इतनी मात्र समानता लेंगे।
एक समय दूसरा नहीं लेना
हा?
एक समय दो समय को समानता नहीं लेना।
नहीं नहीं वो उसका काल नहीं गिनना है। हमने ये सोचा था कि नारकियों में कहाँ विभंग ज्ञान है, वो विभंग ज्ञान के लिए नारकियों की याद नहीं किया। सामान्य नारकियों में जघन्य का अंतर नहीं होता इतनी विशेषता लेनी, यानी इतनी सिमिलैरिटी लेनी, यानी इसका विभंग ज्ञान में जघन्य का अंतर नहीं है, ये बात घटित हो गई। और जघन्य का भी नहीं हो सकता क्योंकि जघन्य अंतिम समय में होता है, यानी क्या समानता है, तो अंतर नहीं है। अंतर नहीं होता तो और आसान हो जाता, अंतर नहीं है क्योंकि संयम के अभिमुख वाला लिया।
संयम के अभिमुख हुआ
मिथ्या दृष्टि,
तो मरणा पलट गई
तभी तो उसका अंतर घटित नहीं होता, इसीलिए अंतर घटित नहीं। अंत समय में होता है इसलिए उसका अंतर घटित नहीं होगा, ना जघन्य का होगा ना अजघन्य का होगा। अंतर नहीं है, अंतर नहीं है। आयु की बात सोची हमने, आयु की बात नहीं सोची अलग, अभी अभी आयु की सोची ही ना हमने, सोचा था
जघन्य का, सोचा सात कर्मों में जघन्य,
सात कर्मों में जघन्य भी सोचा और अजघन्य भी सोचा, बीच एक समय के लिए जघन्य होता तो अजघन्य का अंतर होता, अब वो जब संयम ही प्राप्त करता है इसलिए अजघन्य का भी अंतर। अब आयु की बात सोची, विभंग ज्ञान के होते हुए जघन्य आयु का बंद करता है तो जाके लब्धि अपर्याप्त में उत्पन्न होता है तो विभंग ज्ञान छूटता है, इसलिए जघन्य का अंतर नहीं। अजघन्य का होगा, विभंग ज्ञान ही है, दो बार आयु का बंद किया तो उसके बीच में अंतर मूर्त का अंतर हुआ। विभंग ज्ञान उसका छूट जाता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं रहता।
जो आपका
पहली बार और लास्ट बार
तो
परंतु उन्होंने उस उन्होंने अजगन्य के लिए अंतर ही नहीं कहा है ना, आठों कर्मों के लिए नारकियों के समान है। नारकियों में कहा है, नारकियों के समान है का अर्थ कुछ कम छह महीना आयु के लिए, अजगन्य का बड़ा अंतर कुछ कम छह महीना होगा। निकालो नारकियों की बात, नारकियों के समान कहने का ही प्रयोजन है, नारकियों में जैसा है वैसा समझो। देखो आदेश में नारकी 70 पेज आयु कर्म की बात करें, जघन्य स्थिति बंध का अंतर नहीं है, ये तो हमने विभंग में भी देखा था, और जघन्य का उत्कृष्ट के समान है। ये नीचे लिखा है उत्कृष्ट के समान, ये विशेषार्थ में लास्ट लाइन में लिखा ना, अजघन्य स्थिति बंध का अंतर काल उत्कृष्ट के समान है, यानी हमने देख लिया था कम से कम अंतर मूल और अधिक से अधिक कुछ कम छह महीना, यानी वो विभंग ज्ञान में वो अंतर पूर्व कोटि को नहीं लिया उन्होंने, बाकी कुछ नहीं कहा, कुछ कम छह महीना का। यानी सात कर्मों में अंतर नहीं है हम कहेंगे, आयु में आयु के अजघन्य में अंतर मूल से कुछ कम छह महीना, आपका क्या प्रश्न है अभी विभंग ज्ञानी का? परंतु उसमें तो ले लिया उन्होंने ना, नपुसक वेद में तो लिया था, विभव ज्ञान में नहीं लिया। वो तो उसको अपर्याप्त अवस्था में छूट वेद तो रहता है ना, इसलिए विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में नहीं रहता है, इसलिए एक भव को ले सकते थे हम विभंग ज्ञानी को, परंतु वो पूर्व कोटि के त्रिभाग को क्यों नहीं लिया पता नहीं, उन्होंने नारकियों के समान कह दिया। जो है वो बताएंगे ना, हम कुछ नहीं कहेंगे, उसका आयु का अंतर नहीं होता इतनी बात समझ लो बस, बाकी अपने से कुछ नियम मत बना। साधिक तृप्ति सागर कैसे होगा? कुछ कम, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था छोड़नी पड़ती है। हाँ, वो पहले भी उन्होंने स्वामित्व पे भी नहीं लिया
था।
स्वामित्व नहीं, वो काल उसका ऐसा कुछ, इन्हें पहले भी हमने ये बात उत्कृष्ट बंद के समय में भी, आयु बंद के समय में ही ली थी, तभी भी उन्होंने नारकियों में ही घटित किया था, 7-6 महीने में कुछ कम। अनुत्कृष्ट आयु का बंद है ना, उसमें ये भी 6 महीने की बात ली थी। अब आगे, आभि निबोधि ज्ञानी क्षुत ज्ञानी अवधि ज्ञानी जीवों में 7 कर्मों के जघन्य स्थिति बंध का अंतर काल नहीं है। मंदाबेन क्यों नहीं अंतर? नहीं, मैं आप कहेंगे अभिनिबोधिक में अंतर क्यों नहीं जघन्य का? बोलो दोषी सर, 10वें के लास्ट में होता है तो उसका अंतर नहीं है। अब अजगन्य का होगा कि नहीं होगा, तो एक समय और उत्कृष्ट अंतर अंतर में। अब एक समय देखो, ये समय दृष्टि है, एक समय में मरण हुआ तो भी मार्गणा चल ही रही है, तो एक समय घटित है, नहीं मरण होगा तो पूरे 11वें का काल है अंतर्मूर्त उतना।
ऑप्शन चेंज ले गया,
ऑप्शन चेंज,
एक बार मरा या एक बार जिंदा।
अब उन्हीं जीवों में आयु कर्म के जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर साधिक एक पल्य प्रमाण, जघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर और उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागर प्रमाण।
आयु का कौन है? समय दृष्टि जगन आयु मान रहा, तो वो सोलह शांति मान रहा
है, मनुष्य की जो मान रहा
है। देखो, समय दृष्टि ले सकते हैं ना कोई,
समय दृष्टि लिया, देव की आयु मान जाएगा जगन,
देव या नारकी मनुष्य की बांधेगी, उसको लेना पड़ेगा,
देना पड़ेगा ना,
क्योंकि वो कौन है समय दृष्टि बांध रहे, मनुष्य या तीरियन समय दृष्टि बांधेगा तो देव की तो पल्ले के ऊपर बांधेगा। हाँ, तो इसको तो समय दृष्टि नारकी या देव लेना है, जो मनुष्य की आयु बांध, पल्ले की कहाँ आता है वो मनुष्य की आयु बांधी तो जघन्य हुई, तो दोबारा जघन्य बांधनी है, तो दोबारा जघन्य कब बांधेगा? फिर देव या नारकी होकर फिर जघन्य बांधेगा, तो इसलिए नारकी ने जगह में बांधी, मनुष्य हुआ समय दृष्टि, फिर देव में चला गया, या देव ने बांधी मनुष्य हुआ फिर देव में चला गया। तो कम से कम समय देने सौधर्मेशा की कम से कम आयु तो पल्ले के ऊपर है, या पल्ले प्रमाण भी ले लेंगे, साधिक पल्ले ले लिया हमने। तो फिर दोबारा उसने जगह ने बांधी, पहली बार बांधी थी एक बहु मनुष्य का किया,
मनुष्य को जगह नहीं बांधी, देव की,
उसके देव की वो जगह ने कहा है।
अच्छा,
सम्यक दृष्टियों के लिए जगह ने, मनुष्य के लिए जगह ने नहीं लेना।
तीन गति घुमा दिया,
देव में ही रखो ना, देव में से मनुष्य में आया वापस देव में चला गया, और फिर उसने फिर दोबारा जगह ने बांधी, यही लेना है ना। स्वामी तो देख लेते हैं, या अपगत आता छेद में भी ले सकते, कितनी बांधता है आयु की बात बताई कि वहां पर इसकी बात चल रही थी अपनी, अभी समय दृष्टि, समय दृष्टि अभी निबोधि ज्ञान अध्याच्छेद 23 में जगन्य का देखो, अभी नीचे से तीसरी लाइन 23 पे अभी निबोधि ज्ञानी शुद्ध ज्ञानी अवधि ज्ञानी समय दृष्टि क्षय समय दृष्टि जीवों के आयु कर्म का जघन्य स्थिति बंध वर्ष पृथक होता है। अब देवों में देखो, वर्ष पृथक का बंध तो देव या नारकी ने किया, अब मनुष्य ने कितने का किया वो भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि फिर जघन्य के लिए फिर उसको देव में भेजना है। तो ये वर्ष पृथक तो किसने किया, देव ने किया। अब मनुष्य कितना करेगा, सम्य दृष्टि मनुष्य ऐसा अलग से नहीं है, सौदर मिशन की जगह नहीं, पल्ले से ऊपर सा, पल्ले से थोड़ा ऊपर वही लेना। ख्याल में आती बात, देखो यहाँ हम आभि निबोधि ज्ञानी में देख रहे थे, और आयु कर्म का जघन्य स्थितिबंध उसके लिए कितना होता है, आभि निबोधि ज्ञानी के लिए जघन्य स्थितिबंध कितना होता है, तो वर्ष पृथक होता है। यानी उसका अध्याच्छेद हम देख रहे हैं, जघन्य बंध है वर्ष पृथक का, तो उसने वर्ष पृथक का बंध किया मनुष्य का,
देव ने मनुष्य का,
हाँ, और मनुष्य ने किया देव का कम से कम बंध। एक पल्ले से थोड़ा ज्यादा,
तो फिर जगह ने किया,
और देव ने फिर जगह ने किया। देर पर अंतर कितना हुआ, साधिक एक पल, पहली बार देखो आभि निबोधि ज्ञान यानी चारों गति के, उसमें कम से कम बंध कौन करेगा, समय दृष्टि देव नारकी करेंगे, हम समय दृष्टि देव को लेते हैं, कितना बंध किया वर्ष पृथक्व का किया, उसके लिए जघन्य हुआ। फिर दोबारा जघन्य कौन करेगा, मनुष्य तो पल्ले से ज्यादा करेगा, वो जघन्य नहीं कहलाएगा, तो वो पल्ले प्रमाण देवायु बांध के वहां चला गया, उस देव ने फिर आयु के अंत में फिर जघन्य बंद किया, तो उसके अपनी आयु के अंत तक अंतिम अंतर्मूर छोड़ दो उसका, जघन्य अंत में होता है, उत्कृष्ट शुरू में होता है,
उत्कृष्ट
शुरू। तो इसने वो पल्ले प्रमाण आयु ले ली ना, पल्ले से ऊपर है, और यहाँ पर भी वो उसकी जो पृथक वर्ष प्रमाण जो
पहले ले लिया उसे पृथक वर्ष में अंतर्भूत कराना पड़ेगा,
तो शादी में चला जाएगा। चल मेरी बात है,
आठ वर्ष के ऊपर है
अभी यथायोग्य पृथक हो चुका है। देव ने बांधी है ना पुस्तक वर्ष के, पृथक्व वर्ष आठ से ज्यादा है क्या कम है ऐसा कहने से, अभी जो यथायोग्य उन्होंने पृथक्व वर्ष इतना ही कहा। वो तो गर्भ का बालक भी बांध
सकता है, वर्ष ले
जो छोटी आयु बांध के आया है
इतनी छोटी, तो सभी दृष्टि बांधी छोटी आयु
समय दृष्टि की कहाँ बात है, मिथ्या दृष्टि नहीं हो सकता। गर्भ में आयु बांधे की नहीं इसकी बात चल रही है, अभी निबोधि ज्ञानी तो वर्ष पृथक को प्रमाण होता है। नहीं बांधेगा क्योंकि उसकी मिनिमम आयु ज्यादा है ना। अब समय दृष्टि का कदलीघात होता है कि नहीं होता है पूछो अभी। शाही की बात नहीं, ऑर्डिनरी समय दृष्टि कदलीघात कहाँ हुआ गाता है। आत्महत्या की उसकी उतनी आयु हो सकती है ना, कदली घास से मरा कि नहीं मरा। समय दृष्टि में कदली घात हो सकता है, क्यों मैं कहती हूँ, जब वो तो समाधि मरण जो कहते हैं चुत चावित और त्यक्त में, तो त्यक्त जो मरण है यानी वहां तो समय दृष्टि के तो जो है, तो वहां पर भी कदली घास से वो त्यक्त हो सकता है कि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आता है और मरण होता है, तो उस समय उन्होंने समाधि में रहे वो कदली घास से हुआ, परंतु उस समय वो उनके परिणाम कैसे रहे, शुद्धोपयोग में उन्होंने मरण किया। समय दृष्टि का कदली घास नहीं होता ऐसा नहीं कहेंगे, ख्याल में ना मैं क्या कहना चाहती हूँ, ये तीन प्रकार के मरण जो बताया है चुत चावित और त्यक्त यानी संन्यास मरण जिसको कहेंगे, तो संन्यास मरण भी कदली घात वाला भी हो सकता है, ये मैं कहना चाहती हूँ। उसने जगह ने बांध कर आया था बस उसका कदली घात हुआ बस उसमें, फिर दोबारा बांधे
समय दृष्टि जाएगा देव में जाएगा
जो
कुछ गर्भ में उसका
पर्याप्ति पूर्ण होने पर कदली घात होता है अंतर्मुहूर्त में हो सकता है।
वो सभी
क्यों नहीं होगा, कुछ एक्सीडेंट होगा उसके माँ को तो उसके क्या है, उसके परिणाम से थोड़ा ही कदली घात होता है।
पल्ले में लिया ना मैक्सिम आयु ली नहीं, सोलह में शांति नहीं सागरों में कहा ली है उन्होंने, पल्ले मिनिमम आयु ले ली ना उसकी।
वहाँ पे तो नहीं
वहाँ
पे
यहाँ पर ही
है, हम कदली खाते हैं ऐसा सोचता है कि जीव के परिणाम संकलेशी हो, कदली खात उसके वर्तमान परिणाम से तो नहीं हो रहे
नहीं।
अभी जो कुछ है अभी बाह्य कारण में तो उसके ऐसी आयु बांधी थी ऐसा सब कुछ उसमें आ गया, क्या ऐसा होता है देव से आए हुए का कदली खात नहीं होता, कुछ है नियम उसके, कुछ नियम ऐसे है वो मुझे अभी याद नहीं है पक्का, नहीं उसमें नहीं है वो, कहीं सुना है मैंने कितना या कहीं पढ़ा है, यानी अभी कदली घात जिनका होता है वो मनुष्य से मनुष्य में आए हैं या तीरेंच से आया है या नरक से आए, देव से आए हुए का नहीं होता ऐसा कुछ है, अभी मुझे याद नहीं है उसके बारे में, अभी उसकी बात छोड़ेंगे जो है यहाँ उसको देखेंगे। अभी फिर से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर देखो, आयु कर्म के जघन्य स्थिति बंधका जघन्य अंतर साधिक एक पल्ले पर, क्योंकि सम्यक दृष्टियों में जघन्य आयु बांधने वाले हम देखें देव बांध रहे मान लेते वर्ष पृथकत्व प्रमाण, फिर दोबारा बांधने के लिए फिर देव पर्याय प्राप्त होगी, क्योंकि मनुष्य तो अधिक बांधेगा पल्ले से ज्यादा बांधेगा,
पल्ले बांधेगी मिनिमम सम्यक दृष्टि,
बिल्कुल समय दृष्टि है तो नहीं अभी ये तो मिनिमम बंधेगी समय दृष्टि, जो बांधेगा तो देवायु बांधेगा, और समय दृष्टि जो अभी हमने देखी श्रेणी की तो 84,000 वर्ष हो गई, तो उसने घटाकर 84,000 वर्ष की। अब ये तो घटाकर तो सौधर में से कहीं जाएगा नहीं भवनत्रिक में उसकी मार्गना छूट जाएगी, ख्याल में आती है बात। उसको तो सौदर में समय तो के साथ रखना है, तो उसको बस पल्लत के नीचे नहीं जा सकता, समझ में आती बात।
मतलब ऐसा कोई हो सकता है कि समय दृष्टि घटा के 84,000 घटा के देव में जा सकता है, नरक
देव में कैसे जाएगा, 84,000 वर्ष तो आयु है ही नहीं है सौदर में शांत,
10,000 वर्ष की है ना,
अरे 10,000 वर्ष की भवनत्रिक की है, भवनत्रिक में भी भवनवासी अंतर की है। हमने ये देखा था कि देवायु 33 सागर की बांधी किसी ने और वो मिथ्यात्व में चला गया और उसने 10,000 वर्ष की, समय दृष्टि रहते हुए तो उसकी पल्ले से नीचे होगी नहीं, क्योंकि सौदर में ईशान में एंट्री है, आपकी भाषा में एंट्री पल्ले प्रमाण है। तो ये जघन्य का हमने देखा था, जघन्य अंतर साधिक एक पल्ले और उत्कृष्ट अंतर साधिक 66 सागर प्रमाण। हाँ वेदक और शाही, यानी पहले उसने देवायु बांधी थी समय दृष्टि ने, सॉरी देव ने, देव समय दृष्टि ने मनुष्य छोटी आयु बांधी, जघन्य की बात चल रही ना, अब वो लास्ट में समय दृष्टि हुआ फिर उसने आयु बांधी, सब वहां से देख शुरू हो गया उसका, समय तो हुआ है अंतर्मूर्त में आयु बांधी, सब वहां से लेते 66 सागर तक समय दृष्टि रहा, कोई जघन्य आयु नहीं बांधी, अधिक आयु बांधता रहा, फिर अंत में जाकर फिर जघन्य आयु बांधी उसने, शाही होकर जघन्य बांधी, जघन्य का अंतर फिर उसने जघन्य साधिक 66 क्योंकि क्षायिक हो गया और फिर उसने तो जो जघन्य बांधे मनुष्य की वर्ष पृथक तो क्या ही बांधे,
फिर एक बार फिर देव में जाएगा ये
66 सागर में, तो कितनी बार देव में ही गया ना,
नहीं नहीं ये आयु बांध के तो जगह,
पर उसने जघन्य आयु बांधी नहीं,
क्षायिक होने के मनुष्य में रहना जरूरी है उसको,
हाँ मनुष्य में क्षायिक किया देव में गया और देव में फिर जघन्य आयु बांधे, उसको पल्ले प्रमाण क्यों कर रहे हैं, पल्ले प्रमाण क्यों कर रहे हैं,
मिनिमम
करने की जरूरत क्या है,
तो
कुछ भी रखो ना उसको,
नहीं नहीं
कहीं पर भी रखो, देवायु उसके 66 सागर के अंदर आती है, मनुष्य में उसको पल्ले बांधने की क्या जरूरत है, वो तो उसकी तो अजगण्य आयु है, समय दृष्टियों के लिए जो वर्ष पृथकत्व ने वो सब अजगण्य है, तो बीच में उसने ज्यादा भी बांधी हमें उसने क्या लेना देना, ख्याल में आती बात,
ये जगन्य आयु बांधेगा वो लास्ट आयु बांधेगा,
हाँ बराबर,
उसके बाद मोक्ष आएगा,
हाँ उसी भाव में मोक्ष आएगा, तथा अजगन्य स्थिति बंध का अंतर अनुत्कृष्ट के समान है, अभी समय दृष्टि है अजगन्य स्थिति बंध कर रहा है तो दो बार बांधता है, वर्ष पृथत्व में 8 से ज्यादा हो गए, संयम प्राप्त करेगा श्रेणी चढ़ेगा,
हाँ
अरे वो मोक्ष जाने के लिए वो अंतिम वो
अंतिम
साधिक 8 वर्ष हो गया,
हो गया एक समय भी साधिक
है, अजगन्य के लिए दो अपकर्ष के बीच वाला अंतर्मूर्त वो उसका मिनिमम अंतर,
साधिक 33
और अजगन्य का मैक्सिमम अंतर पूर्व कोटि के वन थर्ड में उसने आयु बांधी, दैत्य सागर में चला गया और फिर आयु के अंत में बांधी साधिक दैत्य सागर। इसी प्रकार अवधि दर्शनी और सम्यक दृष्टि जीवन के जानना चाहिए। मन परिज्ञानी संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहार विशुद्धि संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत और संहिता संयत जीवों में इनके उत्कृष्ट के समान अंतर काल है, इनका अंतर नहीं होगा। क्योंकि मन परिज्ञानी का जगन्य कब होगा तो दसवें के अंत में, परंतु मन परिज्ञानी में अजगन्य का अंतर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ग्यारहवें में भी मन परिज्ञान तो रहता है, फिर बंधन नहीं है। संयत की अपेक्षा कहते तो जगन्य का अंतर नहीं है, अजगन्य का होगा। परंतु सामायिक छेदोपस्थापना में नहीं होगा, क्यों? उनका उनके लिए जगन्य कब है? वो नवे के अंत में। अगर उसमें तो कोई बंद छूटने का सवाल नहीं है, नहीं तो मार्ग ना बदल, दोनों का ही अंतर नहीं है। परिहार विशुद्धि संयत में श्रेणी चढ़ने वाला, उसका भी अंतर नहीं होगा। सूक्ष्म सांप्राय संयत में भी अंतर नहीं होगा। संयता संयत में भी वो जो सातवें के सन्मुख है उसका है जगन्य, उसका भी अंतर नहीं होगा। चक्षुदर्शनी जीवों में त्रस पर्याप्तकों के समान भंग है, यानी उसकी काय स्थिति उसके समान है, इतनी उसका समान भंग लेना। छह लेशा वाले जीवों
के समान अंतरकाल है।
हाँ बिल्कुल 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 ले लो, देख लो। उत्कृष्ट जो हम है, उत्कृष्ट की जो परूपना है अंतर की। हाँ 66 निकालना पेज। ये चक्षु दर्शनी की बात वहां आई थी। मन परिज्ञानी की बात देखनी है आपको। कहाँ गया? 66 में है ना। मन परिज्ञानी जो में सात कर्मों का उत्कृष्ट स्थितिबंध का अंतरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट का तो होगा, क्योंकि वो तो ग्यारहवें गुणस्थान का घटित होगा। यानी उत्कृष्ट में जो उत्कृष्ट, जैसे उत्कृष्ट का अंतर नहीं है कहेंगे, वैसे अंतर नहीं
इसका जगन्य का।
हाँ, और अजगन्य का अनुत्कृष्ट के समान होता है। अनुत्कृष्ट का नीचे से पांचवी लाइन,
यहाँ उत्कृष्ट के समान अंतरकाल लिखा
है। उत्कृष्ट के समान का अर्थ होता है उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट की जो प्ररूपणा है, वैसे ये जगन्य अजगन्य पर घटित होगी। हाँ, उत्कृष्ट की कब है तो शुरुआत में है, और जगन्य कब है तो लास्ट लास्ट में, जहाँ विशुद्धि ज्यादा है। अब अनुत्कृष्ट के लिए क्या कहेंगे कि अनुत्कृष्ट का बंद का अंतर कब होगा? जब बंद ही रुकेगा तब होगा, बीच में जगन्य और बाद में अजगन्य ऐसा तो नहीं होगा। तो कहते ग्यारहवें गुणस्थान की अपेक्षा घटित होता है, तो जो मार्गणा कायम रहती है ग्यारहवें गुणस्थान में भी उसमें अंतर होगा। जैसे मन परिज्ञानी की मार्गणा चल रही है ग्यारहवें में भी, संयत मार्गणा चल रही है, तो वो तो घटित होगा। मतलब सूक्ष्म सांप्राय बस उसका एक ही गुणस्थान है, उसमें बीच में अबंध हो फिर बंध हो ऐसा तो घटित नहीं होता, तो वहां तो वो बात नहीं घटित होगी। तो ये मन परिज्ञानी में अनुत्कृष्ट नीचे मिला आपको, नीचे से पांचवी लाइन, अनुत्कृष्ट स्थितिबंध का जगन्य और उत्कृष्ट अंतरकाल अंतर्मूर्त बताया, ये ग्यारहवें गुणस्थान की अपेक्षा बताई थी। वैसे अभी अपन अपने ओरिजिनल पर आते हैं, जैसे सामायिक छेदोपस्थापना संयत परिहार विशुद्धि सब में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं है बताया था, वैसे यहाँ पर विजगन्य और अजगन्य का अंतर नहीं है। उसमें आकर घटी संयमी सामान्य से संयमी कहेंगे, जैसे अभिनिबोधि ज्ञानी में अंतर घटित हो और जघन्य का अंतर घटे दसवें में रहते हुए जघन्य कब होता है, अंत में होता है, तो उसका अंतर होने का सवाल नहीं, वो तो क्षपक के होता है। अभी उपशमक के तो अजघन्य है मान लेते हैं, परंतु जब वो बंध छूट जाता है तो ग्यारह गुणस्थान होता है, यथाख्यात होता है, वो सूक्ष्म सांप्राय नहीं रहता, इसलिए वहां पर भी घटित नहीं होता। ये जो बताया ना सामयिक छेदोपास्थापनाएं परिहार विशुद्धि उसमें वगैरह, उनमें तो अंतर नहीं है।
परिहार विशुद्धि के भी नीचे होता है सिर्फ
नवे परिहार विशुद्धि का जो जघन्य उत्कृष्ट होता है तो सामयिक के सन्मुख वाला, और जघन्य कब होगा तो सातिशय वाला श्रेणी के सन्मुख वाला, उसका भी अंतर नहीं होगा। जघन्य का अंतर नहीं होता है तो जघन्य का भी नहीं होगा। अभी चक्षु दर्शनी जीवों की बात वहां पर भी बताई थी, तो त्रस पर्याप्त के समान उन्होंने बताया था जघन्य अजघन्य का, क्योंकि त्रसों में या चक्षु दर्शनी में जघन्य कब है, दसवें के अंतर में। अजघन्य का अंतर जैसे ग्यारहवें गुणस्थान की बात, क्योंकि चक्षु दर्शनी यहाँ ग्यारहवें में भी है और वहां देवों में भी है, मार्गणा चल रही है, तो एक समय का अंतर भी होता है, अंतर मुहूर्त का अंतर भी होता है।
श्री जी के पर्याय संयम है, उसके समय क्षेत्र स्थापना नहीं है,
उसके नहीं है।
अच्छा,
यदि वो तो उसके सन्मुख हो जाएगा, नहीं नहीं जो हमारी भाषा में गिर जाएगा, उसकी विशुद्धि कम हो जाएगी, तो सामयिक क्षेत्रों की स्थापना होता है, एट अ टाइम दोनों ही नहीं है। ये दोनों एक साथ होते हैं, उसमें भी वो तो निरूपण या प्ररूपण का डिफरेंस है ना, सामयिक छेदोपस्थापना में
एक देखने का,
यानी सभी महाव्रतों को हमने महाव्रत अंगीकार किया और यहाँ एक एक का नाम लेकर उसके भेद करके बताया, यही उसमें डिफरेंस और कुछ नहीं। छह लेशा वाले जीवों में 76 पेज, सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का अंतर नहीं है। शुक्ल लेशा वाले में तो कहाँ होता है, तो क्षपक में होता है। पीत पद्म वाले को कब होता है, श्रेणी के सन्मुख वाले, तो उनका तो जघन्य का तो अंतर नहीं होगा। और कृष्ण नील कपोत का जघन्य कब होगा, नहीं बादरे के लिए पर्याप्त होगा उसका अंतर क्यों नहीं है, बादरे केंद्र में रहते हुए लेशा पलट जाएगा, अजघन्य होकर फिर जघन्य होने के लिए रेशा का लेशा लेशा यहाँ कहते हैं। छह लेशा वालों में जघन्य का अंतर नहीं है, एक एक की बात करते हैं। शुक्ल लेशा को तो दसवें के अंत में है, उसका अंतर होने का सवाल नहीं, यानी शुक्ल लेशा वालों में जघन्य कौन सा है, तो दसवें के अंत में। पीत पद्म लेशा वालों में जघन्य कौन है, तो सातवें गुणस्थान का जो श्रेणी के सम्मुख, यही है ना। अच्छा अच्छा, क्षायिक होने वाला, अथवा कह के उन्होंने क्षायिक, क्योंकि संयमियों से भी क्षायिक वाले विशुद्धि ज्यादा है, तो क्षायिक को भी लिया उन्होंने, क्षायिक के सम्मुख वाला पीत पद्म दोनों लिया उसमें। अभी कृष्ण नील कपोत में जघन्य किसको होगा, वो तो चौथे गुणस्थान तक ही होती है, तो इनमें जघन्य किसके होगा, तो एक इंद्रियों के होगा, क्योंकि चौथे गुणस्थान में कितना भी कम बंध हो तो अंत कोड़ा कोड़ी तो होगा ही होगा, और वो एक इंद्रियों को तो सागर से भी कम हो जाएगा। तो कृष्ण नील कपोत में किसी एक इंद्रिय ने जघन्य बंध किया, कौन है वो, बादर एक इंद्रिय पर्याप्त जीव जघन्य स्थिति बंध किया, जघन्य के बाद वो अजघन्य करने लगा, तो अजघन्य करके वापस जघन्य होने के लिए अंतर्मूर्त तो लगता ही लगता है मिनिमम, बाय दैट टाइम उसकी लेशा पलट गया,
लेकिन कीर्तन का प्रकृति अपवाद आ जाएगा।
तीर्थंकर प्रकृति के कहाँ है, ये मूल प्रकृतियों की बात चल रही है। मूल
प्रकृति
वो बात अलग है, उत्तर प्रकृतियों की बात यहाँ नहीं उठानी।
अच्छा लेशा होती है तीर्थंकर प्रकृति का, छोटे भूषण में जगत होगा, माधव में नहीं होगा।
तीर्थंकर प्रकृति का जगत
आठवें में होगा,
आठवें में होगा नहीं, और शाही
कृष्ण लेशे में आठवें का है, आठवें तो शुक्ल लेशे है,
सातवें में होगा
कृष्ण लेशा की बात है।
मैं आपकी बात कर रहा
हूँ,
कृष्ण लेशा में बंद करने वाले की बात। ठीक, तो ये छह लेशा में हमने देखा था जघन्य स्थितिबंध का अंतर नहीं है और उसका कारण देखा। अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त, ये जो उत्कृष्ट अंतर है वो लेशा वाला जो अंतर्मूर्त है उसमें से दोनों ओर उसको अजघन्य करना एक एक समय के लिए, बीच में जघन्य रखना। अब शुक्ल लेशा में अजघन्य का अंतर करते समय ग्यारहवें गुण स्थान को ले गए, पीत पद्म पीत पद्म में नहीं होगी बात है। यानी शुक्ल लेशा में तो वो ग्यारहवा गुणस्थान घटित होगा अजघन्य के लिए। अब आयु कर्म का भंग उत्कृष्ट के समान, यानी इसमें भी लेशा पलट जाएगी ना, वही की वही लेशा नहीं रहेगी तो हाँ नारकियों में घटित होगा। देवों में अपनी अपनी लेशा है तो उसका तो उत्कृष्ट अंतर वो छह महीने वाली घटित होगी बात, जघन्य अंतर अंतर्मूल इतनी विशेषता है। पीत और पद्म लेशा में यदि दर्शन मुनि की क्षपना होती है तो इनमें सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का अंतर काल तो नहीं ही है पर अजघन्य स्थितिबंध का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर काल अंतर्मूर्त है। नीचे कुछ लिखा है देखते हैं, विशेषत पहले जघन्य स्थितिबंध के स्वामी का निर्देश कराए, यहाँ पीत वहाँ पीत और पद्म लेशा में जघन्य स्थितिबंध का स्वामी दो प्रकार का जीव बताया है, एक प्रमत्त संयत जीव और आयु के लिए प्रमत्त लिया था इन्होंने, सात कर्मों के लिए प्रमत्त 46 है ना। लेशा वाली बात कहाँ है वहाँ, वो प्रमत्त साकार स्वरूप शुद्ध है अथवा शपक जीव तदनंतर समय में कृतकृत्य होगा, यह अप्रमत्त लिख लेना हो। हम अभी वो चालू पेज देखते इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ सात कर्मों के जघन्य स्थितिबंध का अंतरकाल दो प्रकार से कहा गया है, शेष कथन सुगम है। अजघन्य के लिए अंतर अंतर्मूर्त बताए, अब यही रुकेंगे। क्या सदा देव।